हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के एकादशी के मंथन कार्यक्रम में। राधानाथ महाराज द्वारा 10 उपदेश उनके शिष्यों को जो उन्होंने दिए उस पर हम चर्चा प्रारंभ किए थे, और मैं जब लंदन से निकला तो उसके जस्ट एक दिन पहले राधानाथ महाराज वहीं पर थे, और उनका वहाँ मैनर, भक्तिवेदांत मैनर में कार्यक्रम हुआ, और उसके पश्चात मैं उनसे जब मिला तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा कि राधा मदन गोपाल जी कैसे हैं, और फिर उन्होंने पूछा उससे ज़्यादा ज़रूरी राधा मदन गोपाल जी के सेवक कैसे हैं, हाउ आर द सर्वेंट्स ऑफ श्री श्री राधा मदन गोपाल जी। तो मैंने बोला बाय योर मर्सी दे सीम टू बी वेरी हैप्पी। फिर महाराज ने बोला कन्वे माय हम्बल ओबेसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ All the servants of Shri Shri Radha Madan Gopal Ji. और महाराज भी बोले कि most of the places which I visit in America, they have seen the deities of Nasik and have become very much attracted by Shri Shri Radha Madan Gopal, comparing it with the standard of Mayapur and Vrindavan. So I said, yes Maharaj, our temple is in Vrindavan colony. So just I left the 31st morning ki meri flight thi, to 30th evening Maharaj ka wahan par lecture tha, aur लंदन में जो भक्तिवेदांत मैनर है वो लंदन में नहीं, पूरे वेस्टर्न प्रीचिंग, अमेरिका भी लीजिए यूरोप भी लीजिए, तो भक्तिवेदांत मैनर वो सबसे सक्सेसफुल इस्कॉन सेंटर है, मतलब कॉन्ग्रीगेशन और ब्रह्मचारी को लेकर। तो वहाँ पर जब वहाँ पर राधानाथ महाराज, भक्ति रसामृत महाराज और जनानिवास प्रभु, इन तीनों का लेक्चर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, तो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने मिला, और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑल ओवर यूके जितने सेंटर्स हैं सभी आए थे ये शाम का सेमिनार अटेंड करने, क्योंकि जनानिवास प्रभु मायापुर छोड़े, इंडिया छोड़े 41 ईयर्स के बाद, उनका कुछ वो भी कुछ उनका लीगल पासपोर्ट का काम था, इसलिए उन्हें वहाँ लंदन जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं के हैं लंदन के। तो 41 ईयर्स बाद वो वहाँ मायापुर छोड़े उसके लिए, वहाँ जाने के लिए। तो लंदन में एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, जनानिवास प्रभु इज कमिंग आफ्टर 41 ईयर्स टू हिज होमलैंड। तो अपने लेक्चर में बोल रहे थे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वही लंदन है, वही इंग्लैंड है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, मैं बड़ा हुआ था। तो भक्ति रसामृत महाराज, देवामृत प्रभु जो पहले, और राधानाथ महाराज, तो इन तीनों का सेमिनार अरेंज किया था। तो मैं देख रहा था उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑल ओवर यूके का उधर भक्तिवेदांत मैनर में आया था, और उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ था 450। तो हमें लगता होगा कई बार कि हमारे प्रोग्राम्स में कम आ रहे हैं लोग। जब मैंने बताया कि एक सेंटर में कि हमारे 25 ब्रह्मचारी हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। सबसे पहला प्रश्न कि रहते कैसे हो लोग, क्योंकि उधर मंदिर में खाली एक दो ब्रह्मचारी हैं और उनके लिए फैसिलिटीज ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि जो भक्तों का संग, वैष्णव सेवा और भगवत सेवा जो हमें प्राप्त हुई है उसका फॉर्च्यून क्या है। बहुत से ऐसे ऐसे इस्कॉन के मंदिर हैं जिनको डीटीज साल में एक आध बार ही, राधा कृष्ण के डीटीज ऐसे लाइव देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको दिन रात राधा मदन गोपाल जी ऐसे दर्शन दे रहे हैं, भर भर के फेस्टिवल्स दे रहे हैं, विजुलन यात्रा प्रारंभ हुई है। तो मैं जब जाता हूँ तो एक कारण बाहर जाने का ये है कि वापस आता हूँ तो बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि जो फॉर्च्यून, जो सुविधा, जो कृपा हमको मिली है वो तुलना के बाहर है। तो आज हम राधानाथ महाराज के द्वारा कहा गया हमारे आज के मंथन का कोट लेंगे। डू नॉट टेक दिस मटीरियल वर्ल्ड सो सीरियसली बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग, जस्ट लाइक द क्राइंग एंड लाफिंग ऑफ अ मैड मैन। बहुत इसमें डीप मीनिंग महाराज ने कहा है। आप में से कितनों ने एक्चुअल किसी बोनाफाइड पागल को देखा है मेंटल असाइलम में? बहुत कम है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा संकीर्तन रस प्रो, किसी पागल को आपने एक्चुअल जो पागल है?
पागलपन के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं। जो हार्डकोर पागल रहता है तो उसको स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बोलते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, तो वो कभी बहुत बड़ा नेता बन जाता है।
आपने कितना उसको सीरियसली लिया था? पॉइंट ये मैं जब एयरफोर्स छोड़ने का मैंने एप्लीकेशन डाला था तो बहुत से जो मेरे सीनियर सुपीरियर ऑफिसर्स थे वो अलग अलग तरीके से जानना चाहते थे कि इतनी कम उम्र में जिसने एयरफोर्स का पूरा बॉन्ड पूरा नहीं किया, 20 साल का बॉन्ड था जो साइन किया था और केवल 7 या 8 साल हुए थे मुझे, तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट का एप्लीकेशन डाला, उम्र मेरी कुछ 23 साल ऐसी थी, 23 ईयर्स ओल्ड, एयरफोर्स छोड़ना चाहता है, सिलेक्ट हुआ है फाइटर पायलट में, फिर टेनिस लीग में, नेशनल टेनिस लीग में। तो सबको बहुत यह अचंभा हो रहा था कि क्या कारण हो सकता है, क्या ऐसे इसको बाहर कुछ मिल रहा है कि ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने कुछ ये गुप्तचर जिसको बोलते हैं वो अपॉइंट किए थे स्पाइज पता लगाने के लिए, और फिर मुझे लास्ट में एक साइकेट्रिस्ट को रेफर किया था। उनको लगा ये शायद बहुत या तो पागल हो गया ये या कोई इसको पागल बना रहा है, तो मुझे साइकेट्रिस्ट को रेफर किया था। तो वो साइकेट्रिस्ट, उसके साथ सेशंस होते हैं ना साइकेट्रिस्ट के साथ, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपका बैकग्राउंड, बचपन में क्या क्या किया आपने, कैसे पले बड़े, क्या आदतें थी, सब पता लगाने के लिए कि बचपन से स्क्रू ढीला है कि अभी हुआ है। तो उसने मुझे ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया ये जो महाराज का कोट और एग्जाम्पल है, तो उसने मुझे 2 दिन के लिए साइकेट्रिक वार्ड में रखा जहाँ सारे पागल पागलों के बीच में, ये पता लगाने के लिए कि ये कितना नॉर्मल महसूस करता है अंदर। तो एक्चुअल आप विश्वास नहीं करेंगे जैसे बता रहे हैं, 2 दिन में ऐसे हार्डकोर पागलों के बीच में था वो ऐसे वार्ड था पूरा, मेरे इधर पागल इधर पागल, सामने सब जगह पागल ही पागल। पूरा एंट्री किया, एक मेरे सामने वाले बेड में था अलक निरंजन, बस दिन भर यही कर रहा है, ऐसे हिटलर जैसे हाथ आगे करके अलख निरंजन। और एक वो दिन रात उसका एक ही मंत्र चल रहा था, महाकाल कंकाल दुष्काल, बस ऐसे राइमिंग बना के सब महाकाल कंकाल दुष्काल। तो एक दिन तो मुझे अजीब लग रहा था, फिर दूसरे दिन मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, शायद मैं अजीब हूं इनके बीच में। और वो ऐसा था कि रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट ने वहां पर वो रेफर करके अंदर रखा था। तो मैं फिर सोचा कि ये लोग अपना पागलपन लगा रखे हैं, तो मैं भी शुरू करता हूं अपना, मैं हरे कृष्णा जोर जोर से बोलना शुरू किया। तो फिर बाकियों को महसूस हुआ कि हाँ, हमारे कैटेगरी का ही। तो महाराज ने ये जो कोट किया कि इस भौतिक संसार की स्थिति भी वैसी है जैसे कि एक पागल की स्थिति होती, वो कब क्या करे कब क्या न करे। एक जो पागल नहीं है वो उसे बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जैसे पुणे यात्रा की बात है, ये मेरे ख्याल से 2004 ऐसे, उस समय मैं महाराज का सर्वेंट भी था। तो पुणे यात्रा में आपने देखा होगा कृष्णचंद्र प्रभु का जो बंगला जहाँ पे पुणे यात्रा होती थी, तो वहाँ पर वो बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने ये सब बना रखा है, वो स्लाइड्स घसरगुंडी और ये सब। तो महाराज अपने कमरे से नीचे देख रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट लेके आया था महाराज का, तो महाराज ने देखा कुछ बच्चे वो सीसॉ खेल रहे थे। क्या बोलते हैं सीसॉ को? वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे? मराठी में नहीं, कोई खेलता ही नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा। तो सीसॉ में कुछ बच्चे वो खेल रहे थे। कितने खेले सीसॉ, कितना खेले, कौन कौन खेला है? तो उसमें आप जानते हैं कि एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है ना। तो महाराज ने उसे देखा और महाराज ने कहा, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दिस सीसॉ, कि कोई एक ऊपर जाता है तो दूसरे को नीचे जाना पड़ता है, फिर एक जो वो ऊपर जाता है तो उसको नीचे जाना पड़ता है उसको ऊपर लाने के लिए। महाराज बोले, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, समटाइम्स व्हेन यू आर अप यू आर थ्रोन डाउन, sometimes when you don't even realize that you are so down you are thrown up. Fir maharaj ka ek acha realization unhone kaha, maharaj bole, but in devotional service also it is like playing seesaw, because in devotional service when the devotee goes down he smiles, because of his going down if other person is coming up. So his smile is that the other person is coming up. So that is devotional attitude. तो एक छोटा सा पास्ट टाइम महाराज का याद आया मुझे। मटीरियल वर्ल्ड कोई रियलाइजेशन किसी का, why we should not take this material world seriously because of the changing nature? कोई किसी का अनुभव है? खैर, भौतिक संसार में रहते हुए चेंजेस इतने हो रहे हैं कि अब हम उब चुके हैं कि उसके बारे में सोचना भी, और जो एक चीज कांस्टेंट है वो है द लॉ ऑफ चेंज, जो बोलते हैं ना, देयर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज द लॉ ऑफ चेंज, दैट एवरीथिंग will change eventually. इसलिए भक्ति में भी कई बार हमें लगता है कि मेरी साधना में, मेरे चैंटिंग में, मेरे हियरिंग में मुझे वो उत्साह नहीं आ रहा है, तो कई बार हम उसे भी यदि इतना सीरियसली न लें तो हमारी साधना बहुत हम आराम से कर सकेंगे। इसलिए प्रभुपाद को जब भक्त पूछा करते थे, बहुत कम ये प्रश्न प्रभुपाद को पूछे गए कि साधना में जप के समय माइंड कैसे, तो प्रभुपाद ने केवल सिंपल उदाहरण दिया, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हारा ये जीभ है और तुम्हारे कान है, ये माइंड कहाँ बीच में आ रहा है, जस्ट चैंट एंड लिसन। प्रभुपाद मेड इट वेरी सिंपल, जस्ट चैंट एंड लिसन। और एक बार महाराज अपने एक प्रवचन में इसी पॉइंट के ऊपर कह रहे थे कि इफ वी जस्ट फोकस ऑन व्हाट कृष्णा लाइक्स देन अवर स्पिरिचुअल लाइफ विल बिकम सो इजी एंड सिंपल एंड स्मूथ दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। एज सून एज वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर अवर प्लेजर इवन इन डिवोशनल सर्विस then all the problems, that is the beginning of all the problems in our devotional service. So what Krishna likes, even if we are struggling, Krishna likes that someone is struggling to get purified for him. Maharaj bole, he likes, not that he is a sadist. Sadist matlab wo nahi ki aise maza aata unko humko takleef mein dekh ke, nahi, lekin wo dekh rahe hain ki ha ये इतनी मेहनत कर रहा है जप में, साधना में, मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो जैसे ही भगवान केवल उतना ही देखते हैं तो उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और चाहे हम शुद्ध हो या न हो, यदि हम अपनी तरफ से प्रामाणिक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के हेतु से हमारी साधना करें तो वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्नता देती है। तो हमने फर्स्ट कमांडमेंट शुरू कर चुके थे जिसमें महाराज कहते हैं माय डिसाइपल शुड बी ट्रेन टू डीपली वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट साधना। और मेरे ख्याल हमने ये चार लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, रिकॉग्नाइज, रिपेंट, रेक्टिफाई, रीयूनाइट, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट साधना। और द थ्री सी नेचर, कंडीशनल नेचर, सर्कमस्टेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कंडीशनल नेचर, जस्ट एक रिकैप इसका और बाकी दो का भी, पास्ट लाइफ इंप्रेशंस। श्रीमद् भागवत में भी जैसे उदाहरण है गजेंद्र, गजेंद्र का उदाहरण है कि कैसे गजेंद्र उस समय जब विकट परिस्थिति में गजेंद्र आ गए थे तो गजेंद्र को अपना प्रीवियस लाइफ के जो इंप्रेशंस थे वो कंडीशनल रूप, कंडीशनल नेचर के रूप में दिखाई दिए या वो बोलने लगे, प्रार्थनाएं बोलने लगे। क्योंकि गजेंद्र अपने पिछले जन्म में भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, इंद्रदुम्न महाराज। तो ये जो हमारे अंदर इतने पिछले जन्मों के अलग अलग इंप्रेशंस हैं वो सब मिलाकर हमारा एक कंडीशनल नेचर बनता है कि हम किस प्रकार की हमारी आदतें होती हैं, किस प्रकार कि हमारे लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, व्यवहार होता है। और फिर उस कंडीशनल नेचर को लेकर हमें एक परिवार में जन्म दिया जाता है। तो कुछ जो भी हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे पिछले जन्म के कंडीशनल नेचर या इंप्रेशंस को लेकर है। इसलिए हमारे बहुत से इस्कॉन के सन्यासी, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखा गया तो बहुत से इस्कॉन के सन्यासी वो इंडिया में किसी मंदिर के ब्राह्मण थे, कहीं पे कोई पंडा था, कोई पुरोहित, ये अलग अलग उनके बैकग्राउंड समझ में आए। और इसलिए जैसे ही वो श्रील प्रभुपाद या कृष्ण कॉन्शियसनेस के संपर्क में आए तो तुरंत उनका जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर था वो उनके कंडीशनल नेचर के ऊपर आ गया। तो फैमिली अपब्रिंगिंग, अब मैं जहां मैनचेस्टर में गया था जहां मोस्टली प्रीचिंग हुई थी इस बार, तो वहां पर मैं बहुत से हमारे इंडियन फैमिलीज उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था उनके लिए, और उनके साथ जा जाके अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम कर रहे थे। तो वहां पर मैंने देखा कि उनके बच्चे वो सब वहीं पे पैदा हुए, तो हैं ये लोग भारतीय, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी, इस प्रकार से, लेकिन उनके बच्चे सब वहीं पे पले बड़े, पैदा भी वहीं पे हुए। तो 90% ये बच्चे जो वहां इंग्लैंड में पैदा हुए किसी को भी हिंदी नहीं आती और उनकी मातृभाषा भी नहीं आती, क्योंकि वो जो स्कूल में जाते हैं वहां पर केवल इंग्लिश बोली जाती है, और फिर वो घर पर भी आकर, ताकि वो इंग्लिश उनकी अच्छी रहे तो घर पर भी आकर इंग्लिश में बात करते हैं। तो मैं एक फैमिली, एक पंजाबी फैमिली उनके घर पर था, तो उनके दो बच्चे, एक 15 साल का लड़का और 13 साल की उनकी लड़की, तो मैं अपना प्रसाद ले रहा था, मैं कल अपने चिंचोली कार्यक्रम में इसके बारे में बता रहा था, तो वो लोग जब मुझे देखे कि ये हाथ से खा रहे, तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर उनकी अपब्रिंगिंग क्या हुई थी, हैंड्स आर डर्टी, फिंगर्स आर डर्टी, ये इसे खाते मतलब अनक्लीन है बहुत। तो फिर वो डिस्कशन शुरू किए, वो मुझे पूछे कि डोंट यू फाइंड इट वेरी अनक्लीन ईटिंग विथ योर हैंड। तो फिर मैंने उनको इंसिडेंट बताया कि जब मैं एयरफोर्स में था, हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो प्रोजेक्ट की पार्टी थी हियात रिजेंसी में, 5-स्टार होटल में, और वहां पर 5-स्टार होटल में उनके तौर तरीके सब फोर्क स्पून नाइफ इसके साथ होता है, तो मैं अपने हाथ से खा रहा था, तो मेरा जो बॉस था वो आके बोला कि ये क्या है ना, एकदम अनसिविलाइज्ड तरीके से तुम हाथ से क्या खा रहे हो, अनक्लीन, बारबैरिक। तो मैंने उसको कहा कि इन दिस होटल यू आर यूजिंग द स्पून, बट एज फार एज आई एम कंसर्न आई नो दैट दीज फिंगर्स हैव गॉन ओनली इन माय माउथ, बट द स्पून विच यू आर यूजिंग ऑफ दिस होटल, गॉड नोज where that spoon has gone, and do you think that is more clean? तो मैं बच्चों को बता रहा था कि what is your conception of cleanliness, और मैंने उनको पूछा आप बताओ आपके स्कूल में, मैंने डायरेक्टली उनको तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा कि आपके स्कूल में, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जो रोज नहाते हैं इस कंट्री में। तो मैं डायरेक्टली उनको नहीं पूछना चाहता था क्योंकि वो भी नहीं नहाते थे रोज, तो मैंने इनडायरेक्टली पूछा कि बताओ कितने बच्चे जो रोज नहाते। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा समर में, गर्मी के मौसम में, जो अभी समर चल रहा है, मई जून जुलाई तो समर है उधर का, तो वहां का समर, हमारे जेवरगढ़ पू जाके आए हैं, वहां के समर में मैं बताता हूं, मैं ऊपर का वो मंकी कैप, नीचे सॉक्स और स्वेटर, ये उनके समर के ड्रेस में मैं था वहां पे, ये समर था वहां का। तो उनके समर सीजन में उन्होंने बताया कि क्योंकि गर्मी होती है तो हफ्ते में एक बार नहाते स्कूल के बच्चे, हफ्ते में एक बार नहाते। और मैंने कहा विंटर में, विंटर में विंटर पूरा होने के बाद और एक सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु करके एक हैं राधानाथ महाराज के डिसाइपल, तो उनसे मैं पूछ रहा था, वो एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि 90% जो एम्प्लॉयज हैं वहां के उनके ऑफिस के, वो सुबह उठते ही केवल मंजन करके ऑफिस निकल जाते, और क्योंकि परफ्यूम इंडस्ट्री में तो परफ्यूम परफ्यूम मार के, और समर में केवल शाम को जाके हफ्ते में एक बार नहाएंगे, और विंटर में तो सवाल ही नहीं है वहां पर नहाने वाने का। तो मैं इनको बोल रहा था कि यू थिंक दैट इज क्लीन, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं हाथ से खा रहा हूं दैट इज अनक्लीन, तो ये जो आप वहां पर खाते हो इनके हाथ से, क्योंकि उनको स्कूल में जो स्कूल में बना हुआ वही खाना है, वो घर से नहीं ला सकते। तो मैंने उनको पूछा घर से कुछ टिफिन विफिन नहीं लेके जाते, बोले नहीं हमको अलाउड नहीं है वहां पर, और स्पेशली जो इंडियन फैमिलीज को मना किया गया है क्योंकि वहां के जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये जो इंडियन स्पाइसेस हैं इससे बहुत एलर्जी हो जाता है, तो वहां पर ये एलर्जी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एलर्जी हो जाता है उनको, तो इसलिए इंडियन वो कुछ अपना टिफिन विफिन नहीं लेके जा सकते वहां पर, वो लोग जो देंगे और देते क्या है वहां पर, खाली वो पोटैटो चिप्स और सैंडविच वो देते खाने के लिए। तो मैंने कहा कि वो जो वो लोग देते हैं जो आपको बना के दे रहे हैं वो पिछले 2 महीने से नहाया नहीं है, और उसको आप बोल रहे हैं कि हाँ उसको जब हम हमारे चाकू फोर्क से खाते हैं वो बहुत क्लीन है। तो मेरा डिस्कशन उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बाद में हुआ, पहले तो ऐसे ही बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ, तो मैंने देखा कि वहां पर उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कितना केवल, वो कंट्री इतने सोफिस्टिकेटेड है, सब कुछ यहाँ पर कितना आरामदायक है, बस उसी पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन कल्चर नहीं सिखाया जा रहा है। खैर ब्रिटिशर्स छोड़ दीजिए यहां पर, लेकिन ये इंडियंस हैं, तो मैंने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप अपने बच्चों को इंडियन कल्चर केवल ये मत बताइए कि श्रीमद् भागवत में कृष्णा बुक में क्या हुआ, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हाँ ये तो इंडिया मतलब 5000 साल पहले जो इंडिया था वो इंडिया है। मैंने पूछा इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपके बच्चों को कितना पता है, छत्रपति शिवाजी के बारे में पता है? एक बच्चे को नहीं पता कि छत्रपति शिवाजी कौन थे, इंडियन फैमिलीज के बच्चे एक को नहीं पता था छत्रपति, खाली शिवजी पता है, शिवजी हाँ शिवजी सुना है, कहां सुना है? कृष्णा बुक में। तो मैंने उन बच्चों को पूछा कि आप बोलो कि ये कंट्री के बारे में आप जो इतना गुणगान कर रहे हैं, क्या ये कंट्री में क्या आपने गुण देखा इस कंट्री में? बोले दिस कंट्री इज वेरी जेनरस एंड चैरिटेबल, कुछ बोलने के लिए तो जनरस एंड चैरिटेबल दिस कंट्री, हेल्पिंग मेनी अदर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो मैंने उनको पूछा हैव यू बीन टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, लंदन में एक बहुत बड़ा ब्रिटिश म्यूजियम है, तो वो लोग गए। मैंने व्हाट इज देयर इन दैट ब्रिटिश म्यूजियम, एवरी सिंगल आइटम इन दैट ब्रिटिश म्यूजियम इज नथिंग बट स्टोलन प्रॉपर्टी, अंग्रेजों ने ये कंट्री से ये चुरा के ब्रिटिश म्यूजियम में डाल दिया, इंडिया से कोहिनूर चुरा के वहां डाल दिया, खाली स्टोलन प्रॉपर्टी, और आप बोल रहे चैरिटेबल जनरस है वो लोग। ब्रिटिश म्यूजियम मींस व्हाट दे हैव दे शुड पुट दैट, सो इट इज नॉट ब्रिटिश म्यूजियम, इट इज द म्यूजियम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दीज पीपल आर लाइक थीव्स, स्टोलन प्रॉपर्टी पुट ओवर देयर, द ओनली थिंग विच दे प्रोड्यूस इज पोटेटोज, वो नहीं रखते म्यूजियम में। तो फिर मैंने उनको बताया कि क्या हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था ये ब्रिटिशर्स जो वो बोले कि इंडिया में भी तो काउ स्लॉटर होता है, मैं उनको काउ स्लॉटर एबॉर्शन, एबॉर्शन पता ही नहीं उनको क्या होता है, बच्चों को कोई किसी को बताया नहीं जाता है काउ स्लॉटर एबॉर्शन क्या होता है। तो वो बोले इंडिया में, मैंने इंडिया में इन्होंने शुरू किया, ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, नहीं होता था कुछ भी, दे स्टार्टेड दिस काउ स्लॉटर एंड द मुगल्स दे स्टार्टेड। तो फिर उनको मैंने अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में बताया, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब के बारे में बताया, छत्रपति शिवाजी, और सबकी स्टोरी सुन के उनके सबके रोंगटे खड़े हो गए ये सब बच्चे। और फिर जाके वो अपने माता पिता से बोले, आपने कभी हमको इंडिया के बारे में ये सब नहीं बताया। तो फैमिली अपब्रिंगिंग भी कैसे किसी बच्चे का एक कंडीशनल नेचर बना देता है, और उनका धीरे धीरे वही कंडीशनल नेचर बन रहा था। उनका क्या कंडीशनल नेचर बन रहा था, बस हम सिटीजन बने कहां के, इंग्लैंड के, और इंग्लैंड ही सब कुछ है हमारा, ये पाश्चात्य देश ही सब कुछ है हमारा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कंडीशनल नेचर हो, चाहे आगे हम जो डिस्कस करेंगे सर्कमस्टेंशियल नेचर हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि हमारे जो भी ये प्रीवियस कर्मा, इंप्रेशंस, फैमिली अपब्रिंगिंग को पूरा इरेज, इरेडिकेट कर सकता है और रिप्लेस कर सकता है किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर से। तो हैबिचुअल बिहेवियरल पैटर्न्स, मतलब ये एक जिसको हम बोलते हैं आदत पड़ जाती है ना किसी चीज की। तो कई आदतें हमारी होती है ग्रोस लेवल पे, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए कार्यक्रम चल रहा है और आपके पास घड़ी नहीं है, तो टेंपल हॉल में आप कहां देखेंगे, है ना, तुरंत पीछे देखेंगे ना। इसको बोलते हैं हैबिचुअल बिहेवियरल पैटर्न। घर पर भी वॉल क्लॉक का एक जगह होता है किधर, लिविंग रूम में कहीं पर, और हमें आदत होती है जैसे ही हमको टाइम देखना है तो नजर उसी दीवार पर, उसी जगह पर जाती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि उसकी जगह चेंज कर दो तो बहुत टाइम लगता है रीओरियंट करने के लिए कि अभी घड़ी किधर है। इसको बोलते हैं कंडीशनल नेचर, ये बहुत ग्रॉस लेवल पे ये कंडीशनल नेचर। फिर सटल लेवल पर हमारा कंडीशनल नेचर बन जाता है कि हम एक ही प्रकार की विचारधारा बार 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 वही प्रकार के विचार हम जितना सोचते हैं वो हमारा सटल कंडीशनल नेचर बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जो भी प्रकार का इंद्रिय भोग किए हैं या अभी भी इंद्रियों में जो भोग मिलता है हमें, तो वो हमने पहले अनुभव किया है और उसी को हम रिपीट करते हैं बार बार, है कि नहीं। हम जो भी, जैसे मान लीजिए सोते हैं रोज, ऐसा नहीं कि हर रोज हम एक अलग एक्सपीरियंस लेते हैं सोने का, वही हमारा तकिया, वही गद्दा, वही बेड, वही हम, उसको इतनी बार हमने प्रैक्टिस किया है, सोने की एक्टिविटी को इतनी बार प्रैक्टिस किया। बचपन में तो बच्चा 10-10 घंटा सोता रहता है, तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो हमारा एकदम स्पॉन्टेनियस नेचर बन जाता है। फिर ऐसा स्पॉन्टेनियस नेचर बन जाता है कि वो नींद से कनेक्टेड कुछ भी हमारे कनेक्शन में आ जाए, हमको तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे मैं एक पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार का रिसर्च एक बार कर रहा था, हमारे वहां पर कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए मुझे ये सेमिनार प्रिपेयर करना था, तो उसमें बताया गया था कि पब्लिक स्पीकिंग में क्यों ऑडियंस सो जाते हैं कई बार, है ना, क्यों सो जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से आदत होती है एक टोन में लोरी सुनने की, है ना, बचपन में जब लोरी सुना तो एक टोन में जो भी हमारी दादी माँ वो लोरी सुनाती थी, और कई बार स्टोरीज होते ना बेड टाइम स्टोरीज, तो बेड टाइम स्टोरीज भी वो एक मोनोटोनस टोन होता है, वो तो एक टाइप का स्पीकर होता है, मोनोटोनस स्पीकर, वो एक ही टोन में लेक्चर देता है। तो जब एक ही टोन में लेक्चर या सेम चीज रिपीट होती रहती है तो हमारे मन में एक बात, हमारे कंडीशनल नेचर में ये बात फिट है कि जब मोनोटोनस या एक टोन में या रिपीटेडली कुछ कहा जाए तो आंखें बंद करो। एक राजा था, उसका एक राजकुमार था, वो घोड़े पे सवार हुए और फिर दुगड़ुक 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 चल रहे थे, गए। ये अभी दूसरे किसी वाहन पे सवार होके अन्य लोगों की सुगम यात्रा इनकी चालू हुई। तो क्यों आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है कि मैं जब लेक्चर में बैठता हूं तो इतनी नींद आती है? वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय भी एक ही चीज है, 16 माला, मतलब एक माला में 108 बार और ऐसे 16 बार मल्टीप्लाइड बाय 16, वही। ऐसा नहीं कि अगला माला दूसरा कोई मंत्र आ जाएगा, चेंज कर फॉर अ चेंज। तो इसलिए वो जब मोनोटोनस कुछ हमें लगता है हमारे माइंड को, तो तुरंत हमें वो जो हमने इतनी प्रैक्टिस की है सोने की या फिर खाने की, उसमें भी बहुत स्पॉन्टेनियस हमारा ये कंडीशनल नेचर बन चुका है, क्योंकि इतनी बार वो प्रैक्टिस हमने किया है। इसलिए देखो, एक छोटा बच्चा कभी गलती भी नहीं करता, उसको कोई नहीं सिखाता कि खाने की वस्तु इधर डालनी, कोई उसको नहीं सिखाता कि खाने की वस्तु यहां पर डालनी। हाँ, कभी देखा है छोटा बच्चा गलती से कहां डालूं अभी इसको? हाँ, क्योंकि इधर दो होल इधर भी हैं, इधर भी दो होल हैं, कहां डालूं? हाँ, कभी कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रभुपाद कहे बिकॉज इट हैज बिकम हिज इंस्टिंक्टिव नेचर बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। तो ये क्यों हम बता रहे हैं कि जितना हम भक्ति का अभ्यास रिपीटेडली करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारा कंडीशनल नेचर बनेगा। तो हमें करना क्या है, हमें हमारा कंडीशनल नेचर भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में बनाना है। अभी वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर माया के कनेक्शन में कंडीशनल नेचर हमारा बन चुका है। किसी का कोई एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल और मटेरियल कंडीशनल नेचर का? जैसे मुझे याद है जब इनिशियली मैं जप करना शुरू किया तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत मुझे अजीब लगता था, ऐसे उसको है ना बिना ट्यून के बोलना, जप के समय तो ट्यून थोड़ी होता है। एक खाली डिवोटी मैंने बॉम्बे में देखा था, वो अपना 16 माला ट्यून में करता था। एक माला अलग ट्यून, दूसरी माला अलग ट्यून, ऐसे अलग अलग ट्यून में 16 माला वो करता था, उसके वजह इतना टाइम था। तो मुझे ये जप ऐसे खाली बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था शुरू में। तो मुझे बार बार क्या याद आ रहा था, वो गणपति में जो एक आरती है ना, वो लता मंगेशकर गाती है, उसके एंड में वो महामंत्र गाती है, एक कोई बहुत फेमस आरती है। हाँ एकदम, हाँ, वो आरती कौन सी, सुख करता दुख हरता, हाँ वही। तो उसके बाद में जो, क्योंकि इतने गणपति के कार्यक्रम अटेंड किए थे तो मुझे वही ट्यून ध्यान में आती थी हर समय जब करते समय, क्योंकि वो एकदम फास्ट थी ना, और मेरे को बोला गया था फास्ट करने का, तो ट्यून ध्यान में आती थी। तो कैसे मुझे काफी समय लगा उस कंडीशनल नेचर से बाहर आकर अटेंटिवली कंडीशन हो गया, मंथन में बंद होता है बीच में, और कोई कार्यक्रम में बंद नहीं होता। तो सर्कमस्टेंशियल नेचर, अब हमारा जो कंडीशनल नेचर होता है उसके बलबूते पर हम सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि कॉलेज में हॉस्टल होते हैं, तो हॉस्टल का कमरा किसका कितना साफ होगा, उसका क्या सर्कमस्टेंस परिस्थिति होगी, किसका कितना गंदा होगा, वो उसके कंडीशनल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार आप देखो एक ही कमरे में एक साइड में एकदम धारावी और वही कमरे में दूसरे साइड में मलाबार हिल, तो उनके कंडीशनल नेचर के अनुसार उन्होंने सर्कमस्टेंस वैसा क्रिएट किया। अब देखिए यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कि परिस्थिति हमारे कंडीशनल नेचर के अनुसार हम बनाते हैं, और कई बार सराउंडिंग्स एक सर्कमस्टेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अभी भारत में भक्ति कर रहे हैं, तो भारत का जो सराउंडिंग्स है वो पाश्चात्य देश के सराउंडिंग के अनुसार इतना नहीं है, मैच करता। वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ के जो लोग हैं, इसलिए वहाँ पर कई बार आप ऐसे सैफ्रॉन में शेवन हेड भी घूम रहे हैं तो कोई आपको देखता भी नहीं इतना, क्योंकि वहां पर आपसे भी ज्यादा अजीबोगरीब लोग घूम रहे हैं वहां पर। लेकिन इंडिया में पहली बार आप अगर शेवन हेड तिलक वगैरह लगा के घूमोगे तो सब लोग, ये क्या हो गया इसको, ये अचानक इस प्रकार का परिवर्तन इसके अंदर कैसे आ रहा है। तो क्या होता है कि वैसे सराउंडिंग्स के अनुसार फिर हमारे सर्कमस्टेंस क्रिएट होते हैं। अब भक्ति में हम जब आते हैं तो ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन का प्रोग्राम दिया है वो एक फिक्स्ड सर्कमस्टेंस है, ठीक है? मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में होगी, है ना, वो फिक्स्ड है। तो मैं ब्रह्मचारियों से ये डिस्कस कर रहा था कि जब ब्रह्मचारी आश्रम में हम रहते हैं तो हमारा कंडीशनल नेचर हमको सर्कमस्टेंस के अनुसार ढालना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हमारा कंडीशनल नेचर था कि हम सुबह 8:30 से पहले नहीं उठते थे, किसी का कंडीशनल नेचर था, लेकिन जब वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है तो अब उसे सर्कमस्टेंस के अनुसार अपना कंडीशनल नेचर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एक बंबई में थे ब्रह्मचारी, अभी नहीं है वो, तो वो महाराज के पास गए और बोले कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पर, खाली मंगल आरती 9:00 आप कर लो। तो उनको 9:00 मंगल आरती चाहिए थी, उनका वो कंडीशनल नेचर था कि सुबह वो उठ नहीं पाते थे। तो वैसे ही हमारे कितने ऐसे कंडीशनल नेचर, अलग अलग प्रकार के वैरायटी जो कि हमने इस्कॉन में आने के बाद उसको चेंज कर हम इस्कॉन के परिस्थिति में अपने आप को ढाले। एक मैं गृहस्थ डिवोटी से मिला, तो जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के परिस्थिति होते वैसे गृहस्थ आश्रम की भी परिस्थितियां होती, और कैसे एक गृहस्थ साधक को उन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग मुझे डिवोटी लगे, ये मैं इनसे मिला स्टॉकपोर्ट करके एक जगह मैनचेस्टर के पास लंदन में, यूके में. तो ये डिवोटी ये मुझे बोल रहे थे कि जब ये इस्कॉन के संपर्क में आए तो इस्कॉन में इन्होंने देखा कि कितने अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए. तो ये सब कुछ करना चाहते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि प्रीचिंग भी करना चाहते थे भगवान के लिए, कुकिंग भी करना चाहते थे, फिर मंगल आरती भी अटेंड करना चाहते थे. तो इन्होंने कहा कि इनका कंडीशनल नेचर था. सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या इनकी ये थी कि ये सुबह उठ नहीं पाते थे जल्दी, कंडीशनल नेचर उनका ये था. तो उन्होंने ऐसा जॉब लिया, अपना जॉब छोड़ दिया इस्कॉन में आने के बाद, उन्होंने जो उनका जॉब था वो छोड़ दिया और ऐसा जॉब लिया जो सुबह 7 बजे का था. तो मैं इनकी कॉन्शियसनेस देख रहा था, तो इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस क्या बनाई थी कि मेरा मेन फोकस अभी क्या है कि मेरे कंडीशनल नेचर को मुझे ठीक करना है. तो मैं अगर ऐसा जॉब लेता हूं जो सुबह 7 बजे का होगा तो मैं अपने आप उठना ही पड़ेगा मुझे. देखो कई बार हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने जॉब के लिए, है कि नहीं, है ना. यहां पर ये एक उदाहरण कि इन्होंने भक्ति के लिए अपना जॉब छोड़ा और दूसरा लिया खाली उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए. और उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीना वो जॉब किया और वहां 7 बजे पहुंचने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता था और 6 महीना मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में ढाला तो मेरा कंडीशनल नेचर चेंज हो गया 6 महीने में. और उसके बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया. और क्यों छोड़ दिया, फिर उन्होंने जॉब लिया जो 11 बजे शुरू होता था ताकि अब वो मंगल आरती अटेंड कर सके. तो उन्होंने अपने जॉब को यूज किया मंगल आरती अटेंड करने के लिए. फिर इतना ही नहीं, मैंने कहा और क्या किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये एटीट्यूड. फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि प्रीचिंग, इतने गृहस्थ प्रीचिंग भी कर रहे हैं तो मुझे भी प्रीचिंग करना था लेकिन मुझे बोलना इतना ठीक से नहीं आता था. तो उन्होंने फिर अपना वो जॉब भी छोड़ा और टीचिंग प्रोफेशन में चले गए. टीचिंग प्रोफेशन में वो 8 महीना टीचिंग प्रोफेशन में रहे. क्यों, ताकि बोलना सीख सके, फ्लुएंटली बोलना सीख सके टीचिंग प्रोफेशन में. और एटीट्यूड क्या था, वो छोड़ने के बाद फिर प्रीचिंग शुरू किया उन्होंने. और फिर उन्होंने, ये तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि उन्होंने कहा कि मेरा ईगो इतना स्ट्रांग था कि मुझे कोई भी मीनियल सर्विस करना अच्छा नहीं लगता था. तो उन्होंने लास्ट वेटर का जॉब लिया, अपने आप को उस मीनियल सर्वेंट के कॉन्शियसनेस में डालने के लिए वेटर का जॉब लिया. हालांकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब लिया और वो भी ऐसी जगह गए जहां पर कोई उनको जानता नहीं था. और वो 5 महीने वेटर का जॉब किए और फिर मंदिर में आके जो भी मीनियल सर्विस, वो फिर एकदम वो बोल रहे थे कि मैं मंदिर में भी कर सकता था लेकिन मंदिर में हर समय मेरे को, मैं अपने बारे में ही सोचता था कि अरे मैं कर रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है वो. तो मुझे स्मूथली वो सर्विस करनी थी. तो ये जो भी मंगल आरती सुबह अटेंड करना, प्रीचिंग और ये मीनियल सर्विस. और वो बोले कि एक और उसमें फायदा मुझे ये हो गया कि वेटर का जॉब उन्होंने जब किया तो उसके साथ उन्होंने कुकिंग भी सीखी, तो भगवान के लिए कुकिंग वो भी उनको करना था. तो इतना ये एंथुजियास्टिक डिवोटी कि उनका मेन फोकस था कि क्या मैं भगवान के लिए अलग अलग प्रकार से सेवा करूं और क्या क्या मैं अलग अलग सीखूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए. तो यहां पर उन्होंने अपने कंडीशनल नेचर को सर्कमस्टेंस ऐसे क्रिएट किए कि उनका कंडीशनल नेचर उस सर्कमस्टेंस के वजह से दूर हुआ. बहुत ही मुझे इंस्पिरेशनल लगा उनसे बात कर. तो हमारे पिछले कर्मों के वजह से और अभी के कंडीशनल नेचर के वजह से हमें अपने आप को गुरु साधु शास्त्र के हाथ में दे देना चाहिए कि वो जो सर्कमस्टेंस क्रिएट करेंगे, यदि उस सर्कमस्टेंस में मैं अपने आप को ढालूंगा तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में फिक्स हो जाऊंगा. किसी का कोई रियलाइजेशन क्वेश्चन? और द लास्ट सी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर हमारा बाहर आता है इन तीन मुद्दों के वजह से. एक है प्रॉपर हियरिंग एंड चैंटिंग. तो राधानाथ महाराज का मैं एक ट्रांसक्राइब्ड लेक्चर पढ़ रहा था हाल ही में, तो उसमें महाराज ने कहा एक बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट उस क्लास में कहा, व्हाई इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट. बहुत बार अलग अलग कारण हम सुने हैं, अनुभव भी किए हैं. तो महाराज ने कहा वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी कैन नॉट फोकस कंप्लीटली ऑन कृष्ण कथा is because we have become so used to hear about ourselves. ये पहली बार मैं सुना है ये एक पॉइंट कि कितना हम आदि हो चुके हैं अपने बारे में सुनने के, इसलिए भगवान के बारे में या किसी और के बारे में सुनने में इतनी रुचि नहीं होती, चाहे वो भगवान हो चाहे पड़ोसी हो कोई भी हो. We have become so used to hearing about our own self. और फिर महाराज ने उदाहरण दिया, जस्ट लाइक वेन वी आर बॉर्न, हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही सभी हमारे ऊपर अटेंशन होता है कि अरे हाँ, सब अटेंशन हमारे ऊपर होता है, सब हमको देखते हैं, हमको खिलाते हैं, नहलाते हैं, पहनाते हैं. तो वहां से वो हमारा कंडीशनल नेचर बन जाता है, अटेंशन सीकिंग, अटेंशन सीकिंग की सब मुझे अटेंशन दो, अटेंशन दो. और उसके बाद में महाराज बोले वेन वी ग्रो अप, ज्यादा अटेंशन जब नहीं मिलता, बोला अभी तो बड़ा हो गया है, देन वी स्लॉग हार्ड विथ अवर एजुकेशन विथ अवर वॉट एवर स्किल्स एंड पावर्स टू गेट दैट अटेंशन समवेयर इन दिस वर्ल्ड बैक विच वी हैव लॉस्ट आफ्टर अवर इन्फेंसी. उसको फिर से हासिल करने का हम इतना प्रयास करते हैं और पूरा जीवन केवल उसी में जाता है कि कैसे मुझे वो खोया हुआ अटेंशन फिर से मिल जाए. एंड वी स्टार्ट टेकिंग द पोजिशन ऑफ कृष्णा बिकॉज ही इज द ओनली वन हु डिजर्व्स ऑल द अटेंशन. तो हियरिंग एंड चैंटिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर बाहर आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, ये श्रवण आदि से हमारे अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, वो बाहर आता है. और देखिए, कोई भी नहीं बोल सकता कि भगवान श्री कृष्ण से मैं आकर्षित नहीं हो सकता. इसलिए जो आस्तिक हैं और जो नास्तिक हैं दोनों भगवान की चर्चा करते हैं. नास्तिक भी क्या भगवान की चर्चा कर रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं है, यहां नहीं है वहां नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं, और आस्तिक भी चर्चा कर रहे हैं. सो नो वन कैन अवॉइड कृष्णा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. हालांकि हम जो ये अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य इस भौतिक संसार में ढूंढते हैं, तो श्रील प्रभुपाद और जॉर्ज हैरिसन जो कृष्णा बुक के फॉरवर्ड में लिखे कि सभी कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई फेवरेबली ढूंढ रहा है, कोई अनफेवरेबली ढूंढ रहा है. जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगा. मैं कैम्ब्रिज में था, हमारे जयूरकर प्रभु इनके पुत्र सुशांत वहां पर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, और उनके छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा है केशव। तो मैं 2-3 दिन वहां पर था, और कैम्ब्रिज से मैनचेस्टर मैं ट्रेन लिया मैंने। तो सुबह का ट्रेन था 6:45 का, तो उन्होंने अच्छा टैमरिंड राइस और कोकोनट चटनी ब्रेकफास्ट पैक करके दिया था ट्रेन में लेने के लिए। और वहाँ की ट्रेन्स मतलब आप ऐसे प्लेन में बैठे हो ऐसे लगता है, ऐसी वहाँ की ट्रेन्स है, सब एसी और बंद और उस प्रकार के। तो मेरे सामने एक ब्रिटिश महिला बैठी थी, तो मैं अपना जप किया और करीब 10 बजे फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट का डब्बा खोला, टैमरिंड राइस, सॉरी आज एकादशी है। तो वो अब क्या वो सब बंद, पूरा वो बोगी बंद। तो जैसे मैंने वो डब्बा खोला तो कोकोनट चटनी और टैमरिंड राइस का जो स्मेल है वो पूरे फैलने लगा। तो सभी देखने लगी कि ये क्या, एक तो ये खुद अजीबोगरीब है और ये कुछ खा भी रहा होगा तो वो भी थोड़ा हटके ही होगा सब कुछ। तो मैं अपना खाना शुरू किया, पहले महाप्रसाद ही बोला, देखिए क्या हो रहा है ऐसा। फिर बाद में खाना शुरू किया तो वो जो सामने महिला बैठी थी उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो? तो मैंने कहा दिस इज टैमरिंड राइस। तो पता ही नहीं टैमरिंड वहां मिलता ही नहीं है लंदन वंडन में कहीं, तो उनको मालूम ही नहीं टैमरिंड क्या होता है, हालांकि इंग्लिश वर्ड है। तो व्हाट इज टैमरिंड, मैंने कहा अभी टैमरिंड नहीं समझ में आता, मैंने कहा इमली लो ये समझो अभी। तो फिर उसे केवल उसने देखा नहीं, खाली उसका जो स्मेल उसे इतना अच्छा लगा, तो मैंने वो टिश्यू पेपर में उसको थोड़ा सा दिया। तो उसको बोला आज तक कभी मैंने ऐसा टेस्ट नहीं किया है। और मैंने मुझे लगा कि ये तो अपना इंडियन जो क्यूजीन है उसमें से सिंपल एक टैमरिंड राइस, तुरंत उसका वो कनेक्शन उसमें आया। तो उसने पूछा कैन आई हैव सम मोर, तो पूरा डब्बा मैंने दे दिया, ले खाओ, क्योंकि हम तो कितना प्रसाद भगवान का खाएंगे पता नहीं इसको कभी मौका मिलेगा। तो मेरा एक छोटा सा साक्षात्कार ये था वहां पर कि इसके अंदर वो पहले से बीज था भगवान कृष्ण के प्रति। इट वॉज नॉट सिंपली टैमरिंड राइस, इट वॉज द प्रसाद विच अट्रैक्टेड हर मोर देन दैट। तो इसलिए कई बार मैं वहां पर जब प्रीचिंग करता हूं और वेजिटेरियनिज्म के बारे में बोलता हूं तो वहां के जो लोकल ब्रिटिशर्स उनका ये क्वेश्चन रहता है कि आप वेजिटेरियन फूड में खाते क्या हो, क्योंकि उनको किसी ने हायर टेस्ट दिया ही नहीं है वेजिटेरियन फूड का। उनको वेजिटेरियन फूड मतलब स्टीम्ड वेजिटेबल, मतलब उसमें कैसे जी सकता है कोई, हाँ कैसे जी सकता है। मान लो कि हमको कोई स्टीम्ड वेजिटेबल दे वेजिटेरियन फूड में, जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं वो हमको रोज दे खाने के लिए, तो हम में से भी कोई टिक नहीं पाएगा। बकरी के जैसे खाली घास पत्ता खाओ, तो हम लोग क्यों इतनी आसानी से वेजिटेरियनिज्म को फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्पाइसेस और पूरा तड़का मसाला मार के। तो ये चीज जैसे शिल प्रभुपाद ने उन हिप्पियों को कैसे सबसे पहले उनको महाप्रसाद देकर महाप्रसाद खिलाकर, और वो भी सब लोग आकर देखते थे कि ये छौंक कैसे लगाते दाल में। सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं लीलामृत में, शिल प्रभुपाद वर्ड प्रिपेयर द छौंक, छौंस बोलते हो, प्रिपेयर द छौंस, वी ऑल वुड गैदर टू सी द लिटिल ब्लास्ट।
And when Prabhupada would cook those chapatis, the way they would pop up like balloons and footballs, बस वो देखकर उनको लगता था कि क्या प्रभु ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में क्या होगा ये. तो श्रील प्रभुपाद ने जब उनको उनके अंदर इनहेरेंटली वो अट्रैक्शन था उसको उसके लिए एक ऑब्जेक्ट दिया. उनके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं था. जैसे आपके अंदर अट्रैक्शन होगा ब्यूटी के प्रति, लेकिन कोई ब्यूटीफुल आदमी नहीं है तो फिर क्या अट्रैक्ट. आंखों के अंदर शक्तियां हैं ब्यूटीफुल चीज देखने की, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए. तो वैसे ही हमारे अंदर ये सब कुछ सुप्त अवस्था में, एक्सटेसी पूरा सुप्त अवस्था में है. कौन सा एक्सटेसी? अष्टविकार. इट्स ऑल डॉर्मेंट विद इन अस. जैसे हम सही संपर्क में, सही चेतना में, सही समय आए, वो धीरे धीरे अभी बाहर आ रहा है. और कई बार यदि नेगेटिविटी भी बाहर आती है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही योजना है. जैसे श्रील प्रभुपाद को एक डिसाइपल ने पूछा, ये कॉमन हमारा भी एक्सपीरियंस है, प्रभुपाद को उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद चैंटिंग करने के बाद मेरे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बाहर आ रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, अभी ज्यादा बाहर आ रहे हैं. तो प्रभुपाद ने अच्छा उदाहरण दिया. प्रभुपाद ने कहा परमात्मा ही सेंडिंग देम. एक बहुत यूनिक आंसर प्रभुपाद ने दिया. प्रभुपाद ने कहा दोज नेगेटिव थॉट्स आर सेंड बाय परमात्मा. व्हाई? वो भगवान तो मेरी मदद करने चाहिए, तो ये नेगेटिव थॉट्स क्यों भेज रहे हो? प्रभुपाद ने कहा परमात्मा इज सेंडिंग दोज नेगेटिव थॉट्स टू मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस. And when you make the right choice of not giving into the negative thoughts, that will show your love. Because love means you make the right choice for the beloved. Prabhupada bole. To isliye ye jo hamara andar ka jo conditional nature hai, wo conditional nature bhi jab bahar aata hai bhakti karne ke samay, to wo bhi hamare constitutional nature ko hi रीइन्फोर्स कर रहा है. क्योंकि वो बीमारी अभी बाहर आ रही है और फिर रह क्या जाएगा? केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, जो कि प्रॉपर हियरिंग, चैंटिंग, प्रॉपर साधु संग एंड प्रॉपर सेल्फलेस सर्विस. इसलिए जब श्रील प्रभुपाद को ये अक्सर पूछा करते थे कि आप क्यों आए पाश्चात्य देश में, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? मैं आपकी सर्कमस्टेंस चेंज करने नहीं आया हूं, मैं आपके कंडीशनल नेचर को भी चेंज करने नहीं आया हूं. आई हैव जस्ट कम टू गिव यू व्हाट यू हैव फॉरगॉटन. इसलिए लास्ट में मैं एक बोलना चाहूंगा कि लंदन में जब प्रभुपाद को पूछा ब्रिटिश रिपोर्टर ने पूछा व्हाई हैव यू कम टू लंदन, तो प्रभुपाद का एक बहुत क्लासिक आंसर था. प्रभुपाद ने कहा यू ब्रिटिशर्स यू केम टू इंडिया एंड यू स्टोल अवे ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, द कोहिनूर एंड एवरीथिंग, बट द मोस्ट वैल्यूएबल यू कुड स्टील द कल्चर एंड आई हैव कम टू गिव यू दैट. जो तुम चोरी नहीं कर सके वो मैं तुमको देने आया हूं. असली चीज ये कोहिनूर हीरा वो इतना बहुमूल्य नहीं था जो तुम चोरी करके लेके गए. सबसे बहुमूल्य क्या था? ये वैदिक संस्कृति जो तुम चोरी नहीं कर पाए. तो प्रभुपाद ने कहा आई हैव कम टू गिव यू व्हाट यू फॉरगॉट टू स्टोल फ्रॉम वी इंडियंस एंड दैट इज द वैदिक कल्चर. तो जब हम हमारे ये जो तीन नेचर हैं, कंडीशनल नेचर, सर्कमस्टेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. So conditional nature is because of our conditionings, circumstantial nature is because of circumstances, and constitutional nature is because of Lord Krishna. तो यदि हम, जैसे कि मैंने वो गृहस्थ का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने अपने circumstance, अपने conditional nature को secondary रखते हुए constitutional nature के ऊपर focus किया कि क्या क्या मैं कर पाऊं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जब वो चेतना हमारी होगी, everything, my words, my actions, and my thoughts. If everything, I only focus on how I will please Krishna, Guru and Gauranga, then we will be always on the constitutional platform. We will never remain on the conditional or circumstantial. We will always remain. Har samay hum, hamara jo nij atma ka swarup hai, usi mein hi sthit rahenge. Hare Krishna. Koi prashna hai kisi ka? Any announcements?